समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, वी वेलकम यू अलोंग। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM टुडे विद मी शगुन चोपड़ा एंड अलोंग विद मी I have today Akarshita, and we are thrilled to start our program. First, we'll give you the headlines in our discussion segment, Dateline India. It's dedicated to the festivities across India. And, well, reports and capsules and tributes at the end of the program, and this is our way of telling you, well, you have to stay tuned for the next 30 minutes. First, let's begin with the headlines.
Ji. Pradhanmantri Narendra Modi ne Dehradun mein Delhi-Dehradun Arthik Galiyare ka udghatan kiya.
Prime Minister emphasizes women's active role in decision making will strengthen the journey towards Viksit Bharat by 2047.
Bharatiya Janata Party ne Tamil Nadu Vidhan Sabha chunav ke liye apna sankalp patra jari kiya.
Nation remembers Dr. B.R. Ambedkar on his birth anniversary today.
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमरीकी नौसेना द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया.
And in IPL cricket, Chennai Super Kings to take on Kolkata Knight Riders in Chennai this evening. Listeners, this is our discussion segment, Dateline India, and today it's dedicated to the festivities across India.
Shagun, aaj hawaon mein ek alag hi mehak hai.
True.
Sadkon par bhangde ki goonj hai aur dil mein ek nayi umang. श्रोताओं, आज है बैसाखी, खुशियों का त्योहार, नई फसल का आगाज और हम सबकी तरक्की का जश्न। बैसाखी का त्योहार आज देश भर में श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे की भावना के साथ मनाया जा रहा है। इन सब के बीच क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरे भारत में एक ही त्योहार कितने अलग अलग नामों और परंपराओं से मनाए जाते हैं?
Exactly.
एक कोने में खेत सुनहरी फसलों से लबालब भरे होते हैं तो दूसरे कोने में घर ताजे आम के पत्तों और फूलों की खुशबू से महकते हैं।
How beautiful.
कहीं ढोल की थाप गूंजती है तो कहीं भोर होते ही प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि एक ही त्योहार है लेकिन उसके मनाने के तरीके, उसकी मनाने की परंपरा कितनी अलग है और कितनी विशिष्ट है।
राइटली मेंशन्ड आकर्षिता, सो द आंसर एक्चुअली लाइज इन अ ब्यूटिफुल शेयर्ड इमोशन व्हिच इज gratitude, gratitude always. And so let's start with the festival of Baisakhi first. In the heartlands of Punjab, this isn't just a festival. Well, it is a feeling, it is an emotion. So let us imagine a farmer standing in his field holding a handful of ripe wheat, well knowing months of his hard work has finally paid off. That smile, that relief, that pride, can you imagine, can you feel it? That's Baisakhi, Akashita.
जी हाँ, बैसाखी अन्नदाताओं की मेहनत का फल है। ये पर्व खेतों में परिश्रम करने वाले किसानों की समृद्धि और नई फसल की खुशी का प्रतीक है। और आज के दिन ही 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो हमें वीरता और इंसानियत का संदेश देता है। ये पवित्र अवसर सभी को निर्भीकता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बैसाखी केवल फसलों की कटाई का त्योहार नहीं है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी निहित है। एक तरीके से हम जो अन्नदाता हैं हमारे शगुन, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो फसल है, जो भूमि है, जो धरती है,
वी शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल।
हाँ, हम राइट ग्रेटफुल होते हैं कि वो हमें खाने के लिए दे रही है, हमारा पेट भर रही है।
जी, एंड इवन टुडे आकर्षिता, द टीचिंग्स ऑफ द सिख गुरुज क्वाइटली गाइड मिलियंस टुवर्ड्स सर्विस एंड इक्वालिटी, एंड टू एस्टैब्लिश दैट वी हैव अ रिपोर्ट एज वेल, लेट्स लिसन इन।
वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला।
हजारों श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब में मौजूद गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं। यही वह धार्मिक स्थान है जहां सिख पंथ की स्थापना की गई थी। देश भर के गुरुद्वारों में भी खालसा स्थापना दिवस बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु खालसा साजना दिवस और बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों में पहुंचे हैं। त्योहार हमारे किसान भाइयों के लिए भी खास है क्योंकि वे आज से ही अपने खेतों में गेहूं की फसल की कटाई शुरू करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
हाउ ग्रेट एंड प्योर। सो नाउ लेट्स ट्रेवल डाउन साउथ। इट्स पुथांडू, द तमिल न्यू ईयर। सो इन तमिल हाउसहोल्ड्स देयर इज अ ट्रेडिशन व्हिच इज कॉल्ड कन्नी। This actually refers to the auspicious first sight or first view of the new year.
इसलिए फल, सोना, फूल और दर्पण जैसी शुभ वस्तुएं सजाई जाती हैं। सुबह उठते ही घर के सदस्यों को सबसे पहले थाली में दिख रहे दर्पण की प्रतिबिंब को देखने के लिए कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नए साल की सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीजें दिखाई देती हैं, वो पूरे साल के लिए माहौल तैयार करती हैं। और शगुन अक्सर घरों में भी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि आज नया साल है, आपको सबकी बड़ों की बात माननी है, अगर आज आपने बात नहीं मानी तो पूरे साल आप बात नहीं मानेंगे।
राइट। सो व्हाट डू चूज टू सी फर्स्ट, सच एज होप, अबंडेंस, ब्यूटी, ग्रेटिट्यूड एंड मोर? द लिस्ट इज एंडलेस। दैट कुड एक्चुअली रिफाइन योर माइंड सेट फॉर द होल ईयर। So how fascinating is that? And a little bit funny as well, isn't it? And then there's a grandmother in Chennai carefully drawing a column outside her house at sunrise.
ये महज सजावट नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं। तो चलिए पूर्व की ओर चलते हैं। उड़ीसा में पाना संक्रांति, जिसे महाबिशुबा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अनूठी परंपरा लेकर आती है। लोग पाना नाम का एक विशेष पेय तैयार करते हैं और ये पेय बेल, गुड़ और पानी से तैयार किया जाता है।
Well, right, but here's the beautiful part. This drink, it is also offered to trees. And yes, even nature is cared for, cooled and respected. Isn't that a powerful message, Akarshita?
Sure.
Not taking from nature, but giving back as well. And we'll find out more details. We have a report. Let's listen into that.
जी।
Today, Mahavishuba Pana Sankranti ushers in the Odia New Year, carrying with it a quiet promise of renewal, balance and hope. The air feels different, gentle, devotional, almost festive in its stillness. Temple bells resonate through the morning as devotees gather in large numbers, offering prayers with folded hands and serene faith. Along river banks and sacred water bodies, the ritual of holy dips becomes a moment of spiritual cleansing, an act of leaving behind the old and embracing the new. At the center of this celebration is Pana, a humble cooling drink prepared from bile fruit, jaggery and water. But beyond its ingredients lies its meaning, a gesture of sharing, of caring, of coming together. Passed from one hand to another, it carries the sweetness of community life and the wisdom of living in harmony with the changing seasons. The day also marks the birth anniversary of Lord Hanuman, symbolizing strength, devotion and unwavering faith. In places like Puri, the energy rises with traditional wrestling displays and special rituals, adding color and vitality to the spiritual canvas. In his message, Prime Minister Narendra Modi has described this occasion as a celebration of harmony and renewal, values deeply rooted in Odisha's cultural soul. As the day unfolds, Mahabishuba Pana Sankranti becomes more than a festival. It becomes a feeling of beginnings, of belonging, and of a timeless connection between people, tradition, and nature. And in that gentle rhythm, Odisha steps into a new year gracefully, gratefully, and together. Prakash Das for Parikrama, Bhubaneswar.
तो शगुन, हमने कई अलग अलग त्योहारों के बारे में बात की, अलग अलग नाम, अलग अलग रीति रिवाज, तो आखिर उन्हें आपस में क्या जोड़ता है? चाहे वो असम का बोहाग बिहू हो, जहां युवा ढोल की थाप पर थिरकते हैं, या केरल का विशु, जहां परिवार विशुकनी के दर्शन के साथ जागते हैं, या फिर चेरा ओबो, जहां लोग प्रगति का प्रतीक माने जाने वाले पहाड़ों पर चढ़ते हैं।
एंड ईच सेलिब्रेशन विस्पर्स द सेम आइडिया, व्हिच इज A fresh start, gratitude for the harvest and hope for what lies ahead, which should always be the case in our life as well. Every day, I meant, and even our leaders echoed this spirit. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the nation, highlighting the hard work of farmers, the annadatas, who ensure that no plate goes empty, no plate at all.
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। शगुन, अगर हम बात करें तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे इतने सारे त्योहार फसल कटाई के इर्द गिर्द ही क्यों घूमते हैं।
वेल, देयर इज अ रीजन फॉर दैट दैट लाइज दैट विच मीन्स एक्चुअली दैट एट द कोर ऑफ इंडियन कल्चर लाइज ह्यूमिलिटी and a recognition that no matter how advanced we become, we remain connected to the soil.
जी हाँ, हमारी संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि जब हम gratitude की, हमारी संस्कृति में gratitude की भावना है, जब हम किसी को कुछ देते हैं हमारे संस्कृति में सेवा की भावना है,
very important.
जो सब कुछ जो है हम जो ये celebrate करते हैं, ये त्योहार, ये सब उसी का प्रतीक है। और वो कहते हैं कि पंजाब में पतंग उड़ाता एक बच्चा और एक किसान अपनी पहली फसल भगवान को अर्पित करता हुआ, ये कुछ छोटे मोटे क्षण नहीं है, ये विशाल सांस्कृतिक ताने बाने के धागे हैं। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और शगुन, अगर बात करें तो ये संस्कृति की विविधता कहें या एक तरीके से संस्कृति के प्रति अपना अपना ग्रेटिट्यूड कहें।
वेल एक्चुअली दैट्स द रियल सेलिब्रेशन आकर्षिता, यू पुट इट राइट, एंड नॉट ओनली फॉर क्रॉप्स और कैलेंडर्स बट देयर इज द स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस यूनिटी एंड अ टाइमलेस बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड नेचर। वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड येट वी शेयर वन हार्ट बीट।
तो अगली बार जब कभी भी आप इन त्योहारों के बारे में सुने या आप खुद से इन त्योहारों को सेलिब्रेट करें तो हमेशा अपने आप से एक प्रश्न जरूर करें कि आज मैं किस बात की आभारी हूं, क्योंकि पूरे भारत में लाखों लोग पहले से ही जो है प्रार्थनाओं के साथ, उत्सवों के साथ और आशाओं के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति का, अपनी मातृभूमि का, अपने अन्नदाताओं का आभार प्रकट करें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
फर्स्ट आकर्षिता, लेट्स फाइंड आउट अबाउट विजयवाड़ा, वेयर अ कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट इज ब्रिंगिंग न्यू होप टू ड्रॉट अफेक्टेड विलेजेस इन आंध्र प्रदेश। सो वी हैव अ रिपोर्ट, लिसन इन।
Villages in Andhra Pradesh show success in saving water through community efforts. Murugummi, Marella and Tangella villages in Prakasham district have become examples of water conservation under the Jal Sanchay Jan Bhagidari campaign of the Ministry of Jal Shakti. Earlier, these villages faced serious water problems. Rainfall was uncertain, groundwater levels were low and many borewells failed. This affected farming and daily life. The situation improved with strong community participation. People joined Gram Sabhas and awareness programs. Farmers, women and youth worked together. They learned water budgeting, crop planning and sharing of groundwater. Many water saving structures were built. These include farm ponds, percolation tanks, trenches and rooftop rainwater systems. Murugummi and Tangella built 71 structures each, while Marella built 53. As a result, groundwater levels improved. About 5,900 people now have better access to water. Farming has improved and milk production has increased. Soil moisture is better and fewer people are migrating for work. Murugummi also received a national award showing the success of community-led water conservation. Allu Murli for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
आज आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हम बात करेंगे आज झारखंड की उन यादों की जो बाबा साहब के साथ काफी गहराई से जुड़ी हैं। तो संविधान शिल्पी का इस खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश के साथ सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक लगाव भी था।
बात 9 दिसंबर 1943 की है। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब धनबाद की कोयला खदानों में उतरे। कोल्हान क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत कुमार झा बताते हैं,
बाबा साहब अंबेडकर धनबाद कोयलांचल से गहरे तौर पर जुड़े थे। तो बाबा साहब अंबेडकर भूलन बरारी में पहुंचे और यहाँ की कोयला खदानों को बड़ी नजदीक से देखा और उनकी स्थितियों का जायजा लिया। उस दौरान बाबा साहब ने सुरक्षा की जो जितने भी साधन होते हैं उन्हें पहन करके लगभग लगभग 400-500 फीट गहरी खदान में गए और भूमिगत खदान में जाकर के वहां की समस्याओं को देखा कि किस प्रतिकूल परिस्थिति में श्रम करके श्रमिक मजदूर वहां कोयला काटते हैं और पूरे देश को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो वहां उन्होंने श्रमिकों से सीधा वार्तालाप किया।
संविधान निर्माता की यह यात्रा यही नहीं थमी। झारखंड और बंगाल को दामोदर नदी के अभिशाप से बचाने के लिए बाबा साहब ने दामोदर घाटी परियोजना की भी नींव रखी। वे केवल एक कानूनविद नहीं बल्कि एक विजनरी हाइड्रोलॉजिस्ट भी थे। सेवानिवृत्त शिक्षक दीनानाथ पांडे की माने तो धनबाद और जामताड़ा की सीमा पर खड़ा विशाल मैथन डैम और कोडरमा का तिलैया डैम उन्हीं की दूरगामी सोच का परिणाम है।
देश की आजादी के बाद जब ये जल विद्युत सिंचाई और दूसरे विभाग जब इनके जिम्मे में आया तो इन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी देखी और उसको खड़ा करने के लिए अंबेडकर जी ने देखा कि परिस्थिति ऐसी रही तो देश का विकास संभव नहीं होगा। देश को विकसित करने के लिए इन्होंने सिंचाई वैसे परियोजनाओं को नया जन्म दिया।
बाबा साहब केवल उद्योगों तक सीमित नहीं थे, वे झारखंड को एक अलग प्रशासनिक पहचान देने के पक्षधर थे। 1955 में उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए दक्षिणी बिहार को एक अलग इकाई बनाने का सुझाव दिया था, जो आज के झारखंड की नींव बना। आज उनकी जयंती पर राज्य का हर वर्ग उन्हें याद कर रहा है। बाबा साहब के विचार आज भी झारखंड की प्रगति के पथ पर मार्गदर्शक की तरह जगमगा रहे हैं। परिक्रमा के लिए धनबाद से दीपक और कोडरमा से गजेंद्र के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
पुणे जिला परिषद के तहत खेड़ तालुका में 4 स्कूलों को टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम लिमिटेड और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के सहयोग से ग्रीन स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है और इन स्कूलों को सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और जैविक खाद उत्पादन जैसी आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं विद्यार्थियों के सहभाग से प्रदान की जा रही हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और मौजूदा सुविधाओं का सही इस्तेमाल हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि गांव के इलाकों में जिला परिषद स्कूलों को हरा भरा बनाना और विद्यार्थियों में शाश्वत जीवन शैली के मूल्य निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इनमें शामिल होंगे सोलर पावर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेंद्रीय खाद बनाना, डिजिटल लर्निंग लेबोरेटरी इत्यादि। इस पहल के बारे में सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की आर्किटेक्ट पूर्वा कुलकर्णी ने बताया।
ग्रामीण क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने CSR फंड के माध्यम से और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के सहयोग से पुणे जिले के 4 जिला परिषद स्कूलों में ग्रीन स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया है। इस पहल के उद्देश्य स्कूल में पर्यावरण अनुकूल बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर छात्रों में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना ये कार्य हुआ है। परियोजना के तहत स्कूल परिसरों में सोलर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचय जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, गीले कचरे से खाद बनाने की मशीन तथा इंडोर और आउटडोर वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही पानी के संरक्षण के लिए लो फ्लो वाटर टैप्स लगाए गए हैं। छात्रों को वर्ष भर पर्यावरणीय गतिविधियों से जोड़ने के लिए उनके साथ बैठकर ग्रीन कैलेंडर बनाया गया है। उन्हीं को साथ लेके ग्रीन आर्मी का गठन भी किया गया है जो इन सभी गतिविधियों को देखरेख करेगी। इसके अलावा छात्रों में विज्ञान और पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए साइंस पार्क की विजिट, पर्यावरण संरक्षण, अग्नि सुरक्षा और जैव विविधताओं से जैसे विषयों पर कार्यशालाएं एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर्यावरण अनुकूल पहल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकारी स्कूलों को ग्रीन स्कूल में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई और टाटा ऑटोकॉर्प के CSR सहयोग से अब तक हमने 8 स्कूलों में इस सफलतापूर्वक लागू किया है।
आज उठाया गया हर कदम एक टिकाऊ कल के लिए एक बीज है। इस तत्व के अवधान में ये दोनों संस्थाएं काम कर रही है। उम्मीद है कि अन्य संस्थाएं भी इस तरह की पहल कर खासकर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को देश के शाश्वत विकास के प्रहरी बना दे। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
Listeners, now we'll tell you about Communications Minister Jyotiraditya Sindhya today, who inaugurated a philatelic exhibition. This is titled Ek Bharat Shreshth Bharat, celebrating India's unity and democracy through postage stamps in New Delhi. So this three-day exhibition will continue till Friday. You can pay a visit. Another thing that we'll now tell you about, this is a film, a Malayalam film, which explores time travel, Achappa. The National Film Development Corporation Limited, under the Ministry of Information and Broadcasting, is set to release this latest Malayalam feature film, Achappa's album, on 24th of this month. And this film, let's tell you, is a unique combination of family, fantasy, comedy and emotion. And I already told you, it explores time travel narrative.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
एंड नाउ इन सम बिजनेस न्यूज, इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिमेन क्लोज टुडे ऑन अकाउंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। ट्रेडिंग इन एक्विटीज, एक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव रिमेन शट फॉर द डे ऑन बोथ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। एंड हाउएवर द ट्रेडिंग विल रिज्यूम इन द इवनिंग सेशन एट 5 PM।
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
वी रिमेम्बर द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु वाज बोर्न ऑन 14th of April 1891 इन माओ मध्य प्रदेश।
Young Ambedkar faced a lot of social discrimination while academically training himself, but he surpassed all of them. He prevailed against all the odds and completed a PhD in economics from Columbia University in New York City. He also secured a DSc in economics from the London School of Economics.
Being a victim of caste discrimination, which inspired him to work towards the cause, and with the help of the Maharaja of Kolhapur, he founded the weekly journal Mook Nayak, which criticized the orthodox beliefs of Hindus. He also founded the Bahishkrit Hitkarini Sabha to provide education and socio-economic improvement to the backward class. Instead of taking the route of violence, he led a Satyagraha movement, fighting for the rights of so-called untouchables. Baba Saheb was nominated to Bombay Legislative Council in 1926.
In the Pune Pact in 1934, Baba Saheb reached an understanding with Gandhiji accordingly, where instead of a separate electorate, seats were reserved for depressed class legislative assemblies and the Central Council. In 1935, he was appointed as the principal of the Government Law College, and the following year, he founded the Independent Labour Party, which went on to secure 14 seats in the 1937 Bombay elections when Dr. Ambedkar was also elected to Bombay Legislative Assembly.
In the same year, he published the famous book, The Annihilation of Caste. In 1942, Baba Saheb was nominated to the Governor General Executive Council. He was the only member in the council to handle 4 portfolios. In 1946, he became a member of the Constituent Assembly.
As the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, he aimed to bring about a social revolution in the country, freeing it from any sort of discrimination.
Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning.
The Constitution.
आज फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस की पुण्यतिथि है। वर्ष 1935 में उनकी बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में उन्होंने फिल्मों का पार्श्व गायन से परिचय करवाया। बाद में ये फिल्म हिंदी में धूप छांव नाम से बनाई गई। नितिन बोस ने अपने सिने करियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है। नितिन बोस की फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ऐसा ही एक गीत था जिसने नई पीढ़ियों को उसके दायित्वों का बोध कराया।
साहब की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के।
साहब की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता।
Well, he was one of the pioneers associated with the development of playback singing in Indian cinema, a shift so fundamental that it is hard now to imagine the medium without it, right? So the Dada Saheb Phalke Award to Nitin Bose came in recognition of a lifetime that had already shaped the medium in lasting ways.
सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक शमशाद बेगम की जयंती है। हिंदी फिल्मों के कई सुपरहिट गीत जैसे कभी यार कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार उन्होंने ही दिए और उनके नाम पर ही दर्ज हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले लिए मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
Well, we can rightly hear her distinctive voice. Well, she was a versatile artist.
वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया।
Well, today listeners, we are also remembering the legendary Padma Vibhushan Ustad Ali Akbar Khan on his birth anniversary, one of the most accomplished Indian classical musicians, admired all over the world for his brilliant compositions and his mastery of the sarod.
आइए सुनते हैं उनका ये गायन। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। ये पंक्तियां हिंदी यात्रा साहित्य के जनक राहुल सांकृत्यायन पर बेहद उपयुक्त है। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृतांत तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
Well, today it's also Richard Blackmore's birthday. Richie Blackmore, well, the guitarist, co-founder of Deep Purple and was a founding member of Rainbow and Blackmore's Night.
आज भारतीय हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मंजू सिंह की पुण्यतिथि है। मंजू सिंह ने 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में छोटे पर्दे पर पहला प्रायोजित कार्यक्रम शो थीम के साथ अपनी शुरुआत की थी। मंजू सिंह को खासतौर पर ऋषिकेश मुखर्जी की 1989 में रिलीज हुई फिल्म गोलमाल के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से उनका ये डायलॉग। और अगर ये डायलॉग नहीं, आप एक और उनकी डायलॉग है वो सुनते हैं, नहीं तो आइए गीत एक सुन लेते हैं गोलमाल फिल्म से।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
Well, we also thank you so much, listeners, for tuning in. And we also hope that you have a wonderful day ahead and you celebrate the festivals.
Oh, Baisakhi.
Exactly. So, listeners, with that, we would like to end the program.
Namaskar. Namaskar.